ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जीवः हि जीवश्रेष्ठा हि अजीवानां जीवश्रेष्ठा ह जीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः प्राणभृतः शुभे ततः सच्चित्ता प्रवरः। ततश्चेन्द्रियवृत्तयः जीवा श्रेष्ठा ह जीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सचित्तः प्रवरः ततश्चेन्द्रियवृत्तयः जीवा श्रेष्ठा ह जीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सचित्ता प्रवरः ततश्चेन्द्रियवृत्तयः।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे कल्याणी मां, जीवात्माएं अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ हैं और इनमें से जो जीवन के लक्षणों से युक्त हैं वे श्रेष्ठ हैं। इनकी अपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ हैं और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो चुकी है। तात्पर्य। पिछले श्लोक में बताया गया है कि जीव का सम्मान दान तथा मैत्री भाव से होना चाहिए। इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में विभिन्न कोटि के जीवों का वर्णन किया गया है, जिससे लोग जान सकें कि कब दान देना चाहिए और कब मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। उदाहरणार्थ, शेर एक जीव है, भगवान का अंश है और परमेश्वर इसके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, किंतु क्या इसका अर्थ यह होता है कि हम शेर से मित्रता का व्यवहार करें? कदापि नहीं। हमें उसके साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना होगा। हमें प्रसाद के रूप में दान देना होगा। जंगल में रहने वाले अनेक संत जन शेरों के साथ मैत्री भाव नहीं बरतते, किंतु वे उन्हें प्रसाद देते हैं। शेर आते हैं, प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुत्ते करते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार कुत्ते को घर के भीतर नहीं जाने देते। अपनी गंदगी के कारण कुत्तों तथा बिल्लियों को भले घरों में घुसने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वे घर के बाहर खड़े रहें। दयालु गृहस्वामी घर से प्रसाद लाकर इन्हें देता है, वे खाते हैं और चले जाते हैं। हमें निम्न जीवों के प्रति सदयता का व्यवहार करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें जैसा अन्य मनुष्यों के साथ करते हैं। समता का भाव तो रहना चाहिए, किंतु यह व्यवहार करने में भेद होना चाहिए। हमारा भेदभाव किस प्रकार का हो, इसका उल्लेख अगले 6 श्लोकों में दिया गया है। पहला वर्गीकरण पत्थर जैसे निर्जीव एवं सजीव प्राणी में किया जाता है। कभी कभी पत्थर में भी मानो जीवन प्रकट हो जाता है। अनुभव से यह ज्ञात है कि कुछ पहाड़ियां तथा पर्वत वृद्धि करते हैं। इसका कारण पत्थर के भीतर आत्मा की उपस्थिति है। जीवित अवस्था का दूसरा लक्षण है चेतना का विकास और इससे भी आगे अनुभूति का विकास। महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में यह बताया गया है कि वृक्षों में अनुभूति होती है, वे देख तथा सूंघ सकते हैं। हमें अनुभव है कि वृक्ष देख सकते हैं। कभी कभी विशाल वृक्ष अपनी वृद्धि के दौरान व्यवधानों से बचने के लिए अपनी वृद्धि की दिशा बदल देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष देख सकता है और महाभारत के अनुसार तो वृक्ष सूंघ भी सकता है। इससे अनुभूति का विकास संकेत मिलता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की
जय। श्रील प्रभुपाद। भगवान कपिल देव भक्ति योग की व्याख्या कर रहे हैं। 25वें अध्याय से उपदेश चालू हुआ है, उसका नाम था ग्लोरी ऑफ डिवोशनल सर्विस। और 26वें अध्याय में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मेटेरियल नेचर, प्रकृति का विवरण, सांख्य योग। और 27वें अध्याय में फिर मेटेरियल नेचर का वर्णन है और पुरुष का, प्रकृति और पुरुष। 28वें अध्याय में भगवान ने पुनः भक्ति का वर्णन किया है। लॉर्ड कपिलाज इंस्ट्रक्शन ऑन डिवोशनल सर्विस। और उस अध्याय में भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया है। और इस 29वें अध्याय में पुनः फिर भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। इसका नाम है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। संपूर्ण श्रीमद् भागवतम में अध्याय की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा उपदेश है। भगवान ने एकादश संस्कंध में उद्धव जी को उपदेश दिया है, जो बहुत अध्यायों में है। उसके बाद यह तीसरे स्कंध में दूसरे नंबर का उपदेश है, सबसे बड़ा उपदेश। इस श्लोक में भगवान अपनी मां को सुबह कह रहे हैं। मेरी मां बहुत सुंदर लग रही है, बहुत कल्याणमयी है। भक्ति योग का श्रवण करने से, भगवान की कथा सुनने से देवहूति की शोभा बढ़ गई थी, इसलिए भगवान कह रहे हैं शुभ है, तुम्हारी शोभा बहुत है। वास्तव में सबसे बड़ी जीव की शोभा तब होती है जब वह भगवान से प्रेम करता है। देवहूति एक राजकुमारी थी, लेकिन उसने विवाह किया एक तपस्वी व्यक्ति से, ब्राह्मण से, जो भोगों में नहीं था। कर्दम जी समर्थ व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी भोगों में उनकी रुचि नहीं थी। वे भगवान के भक्त थे, तो देवहूति ने उनके साथ विवाह किया, अपने पिताजी से अपने हृदय की इच्छा व्यक्त कर दिया कि मैं किसी राजा से या भोगी विलासी से विवाह नहीं करना चाहती, मैं तपस्वी त्यागी भगवान के भक्त से विवाह करना चाहती हूं। तब मनु महाराज देहूति को लेकर के आए थे कर्दम जी के यहां। तो कर्दम जी जब संन्यास ले लिए, देहूति आश्रम में रहने लगी और वह भी अपने पति के अनुसार ही तपस्या करने लगी, भगवान की भक्ति में रत हो गई। और भगवान कपिल देव से उसने बहुत जिज्ञासा की है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी और देवहूति का स्थान बहुत ऊंचा है। तो देवहूति पूछते हैं कि हे भगवान, मैं तो अपना जीवन बिता दी जगत के भोगों में, मैं आपका भजन नहीं कर पाई। आप हमारे गर्भ से जन्म लिए हैं, हमारा उद्धार कीजिए। आप सारे विश्व का उद्धार करने के लिए अवतार लिए, तो अपने मां का क्यों नहीं उद्धार करेंगे? तो भगवान को बहुत दया आ गई, बड़े स्नेह से उन्होंने भक्ति की व्याख्या किया। तो भक्ति के कई अंग हैं, आप लोगों ने सुना होगा। यहां पर भगवान यह बता रहे हैं कि मेरी मां सुनो, भक्ति में एक महत्वपूर्ण अंग है सभी जीवों का सम्मान करना। इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है, अथ माम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयं अर्हये दान मानाभ्याम मैत्रेय भिन्ने न चक्षुषा। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए, मैत्री दृष्टि। सभी अपने हैं, सबके भीतर भगवान कृष्ण निवास स्थान बनाकर रह रहे हैं परमात्मा के रूप में। तो सभी जीव भगवान के मंदिर हैं, यह मान करके सबका आदर करना चाहिए। और है ये दान माना भ्याम, दान द्वारा और मान द्वारा। दान वस्तुओं का दिया जाता है और मान मन से और शरीर से किया जाता है। और हेत मान दाना दान माना भ्याम, मान और दान देने के लिए भगवान कह रहे हैं। सभी जीवों में भगवान को देख करके सबका सम्मान करना चाहिए और यथा योग्य अपनी स्थिति के अनुसार दान देना चाहिए। दान बहुत प्रकार की का होता है, ज्ञान दान देना या धन दान देना या अन्य प्रकार की सेवा करना। भक्ति का एक अंग है, भगवान बता रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी भक्ति विकसित हो, बढ़े, तो हमें भगवान की बातों को अवश्य स्वीकार करना चाहिए और मान देना। अमानिना मान देना, स्वयं मान की इच्छा नहीं करना, मान नहीं लेना और दूसरे का सम्मान करना। भगवान कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर शिक्षा दिए वैष्णव को कभी मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और दूसरे को मान देना चाहिए। अमान इना मान देना, यदि कोई अपने को मान देता है तो मान की पहले तो इच्छा नहीं करे और मिलने पर स्वीकार नहीं करे। मान भी एक पतन का कारण होता है, अपने को उससे ज्यादा नहीं मानना चाहिए जितना हम हैं। जब व्यक्ति अपने को बड़ा मान लेता है तब वो दंभ करने लगता है, दिखावा करने लगता है और मान की इच्छा धधकने लगती है हृदय में। हमें मान मिलना चाहिए, हमें प्रणाम मिलना चाहिए इत्यादि कई प्रकार से इच्छा करता है, तो मान से बचना चाहिए और सदा दूसरे को मान देते रहना चाहिए। और है एक मान दान माना अभ्याप, दान और मान से दूसरे का सत्कार करना चाहिए। तो सत्कार करने के लिए भगवान ग्रेड बना रहे हैं। जीव बहुत से जीव हैं, सारा ब्रह्मांड जीवों से भरा हुआ है। नीचे भी जीव हैं, पाताल लोक आदि में, पृथ्वी पर भी, पृथ्वी पर भी अनेक प्रकार के जीव हैं। 84 लाख योनियों में, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, सब जगह जीव भरे हैं। तो इन जीवों का सम्मान हम कैसे करेंगे, भगवान उसको सिखा रहे हैं। ग्रेड बना रहे हैं। जीवा श्रेष्ठा है जीवा नाम, भगवान मान देने के लिए ही कैटेगरी बना रहे हैं। जीवा श्रेष्ठा, जीव जिनमें जीवन का लक्षण है वे श्रेष्ठ हैं। जैसे सूखा हुआ घास और सूखे हुए पेड़ की अपेक्षा जो जीवित हैं, जीवित घास है, जीवित पेड़ है, वो श्रेष्ठ है। जैसे गेहूं की फसल कटती है, चावल की फसल कटती है तो सूख जाती है, तो अजीव है। तो अजीव की अपेक्षा जीवन का लक्षण जिनमें है वे जीव श्रेष्ठ है। ऐसा कहा गया है कि पत्थर में भी जीव है। और बहुत से संत महात्मा कहा करते हैं कि हिमालय जीवित पर्वत है और विंध्य पर्वत वो मरा हुआ है। हिमालय आज भी बढ़ता है, बढ़ रहा है। तो जीव जिनमें है वे श्रेष्ठ हैं और उनकी अपेक्षा भी जिनमें सांस लेने की प्रथा देखी जाती है, प्राण भृत शुभ है शुभ, उनसे भी बड़े जीवों से भी श्रेष्ठ, जीवन के लक्षण से युक्त जीवों से भी श्रेष्ठ हैं सांस लेने वाले। जैसे वृक्ष भी सांस लेते हैं, एक बार कई लोगों ने यह बात कह दिया कि वृक्ष में जीवन नहीं है, तो हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक ये सिद्ध किए कि वृक्ष सांस लेते हैं, इनमें जीवन है। उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि वृक्ष सांस लेते हैं। और महाभारत के मोक्ष पर्व में, मोक्ष धर्म में इसका स्पष्ट भीष्म पितामह उल्लेख करते हैं कि वृक्ष देखते हैं, वृक्ष सूंघते हैं, वृक्ष सांस लेते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो उनमें प्राण वृत्ति है। प्राण वृत्ति का अर्थ है सांस लेना और छोड़ना। तत सचित्ता प्रवरा ततश्चेन्द्रिय वृत्तया। और इससे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनमें चेतना विकसित है। और चेतना ही नहीं, इससे बढ़कर के वे हैं जिनमें इंद्रियों की वृत्तियां हैं, जिनमें सूंघने की, स्पर्श करने की इत्यादि सब वृत्तियां हैं। स्पर्श का जो अनुभव करते हैं, जो देखते हैं किसी चीज को, सूंघते हैं, जिनमें इस प्रकार के इंद्रियों की वृत्ति है, परसेप्शन है, वे श्रेष्ठ हैं। भगवान इस प्रकार क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो जिन जीवों में देखने की, सूंघने की, सुनने की ये सब वृत्तियां हैं, इंद्रियों का लक्षण है, वे जीव श्रेष्ठ हैं उन जीवों की अपेक्षा जिनमें इंद्रियों की वृत्तियां नहीं है। प्राण वृत्ति है लेकिन इंद्रिय वृत्ति नहीं है। इंद्रिय वृत्ति का मतलब है इंद्रिय का कार्य, देखना सुनना आदि। तत्रापि स्पर्श वेदिभ्यः प्रवरा रस वेदिना। भगवान कहते हैं इन जीवों में भी केवल स्पर्श का अनुभव जो करते हैं उन जीवों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं जो रस को जानते हैं, टेस्ट का अनुभव करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। जैसे मछली, मछली में रस लेने की वृत्ति है, तो मछली श्रेष्ठ है ऐसे जीवों से जिनमें केवल स्पर्श का अनुभव होता है। कोई उनको छुए तो उनको पता चलेगा कि कोई छू रहा है। तो जिनमें स्पर्श है, स्पर्श का अनुभव होता है, उनकी अपेक्षा रस का अनुभव करने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। और रस का अनुभव करने वाले जीवों से भी गंध का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ हैं। ततो गंध विदः श्रेष्ठा। जैसे भौंरा आदि, और जो गंध का अनुभव करते हैं उनसे भी श्रेष्ठ हैं शब्द विदो वरा, शब्द का अनुभव करने वाले, शब्द को पसंद करने वाले, नहीं पसंद करने वाले। जैसे सांप, सांप में शब्द को पहचानने की शक्ति है, इसीलिए तो अंधकार में भी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अंधकार में भी सांप मेढक के टर्टर शब्द को सुन लेता है और वहां पहुंच जाता है, उसको खा लेता है। इसीलिए इस संसार में व्यर्थ बोलना ये आत्म विनाश करने वाला है। उस व्यक्ति को काल सर्प बहुत जल्दी पकड़ सकता है जो व्यर्थ बोलता है। सच्चा शब्द है बोलने के लिए महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर अन्य बकवास प्रलाप नहीं करना चाहिए। लोग समझते हैं कि इसमें हानि क्या है, हम बार-बार बोल रहे हैं लेकिन हम अपना बहुत बड़ा नाश कर रहे हैं। वाणी भगवान का दिया हुआ उपहार है, हम जब तक जीवन है तब तक बोल रहे ठीक है, लेकिन वही भगवान का नाम बोल रहे, भगवान का गुण बोले और व्यर्थ की बात न बोले। तो शब्द का बोध रखने वाले जीव उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, केवल गंध का अनुभव करते हैं। ततो रूप भेद विदह, और ऐसे जीवों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं जो रूप को पहचानते हैं, जैसे कौआ इत्यादि। कौआ रूप को पहचान लेता है। रूप को देख करके वो जान जाता है कि ये हमको मारेगा नहीं मारेगा या प्रेम करेगा। कभी कभी जानवरों को काक आदि खाते रहते हैं, और जानवरों के पीठ पर बैठते हैं और जानते हैं कि हमको मारेगा नहीं, और वो निर्भय होकर के भैंसे पर या सांड पर बैठे बैठे घूमते रहते हैं। तो ऐसे जीवों की अपेक्षा वे जीव श्रेष्ठ हैं जिनको उभयतः दत्त, जिनके दोनों तरफ दांत हैं, जिनके दांत भगवान ऐसा सेट किए हैं कि ऊपर भी दांत है नीचे भी दांत है, वे जीव श्रेष्ठ हैं। तेषां श्रेष्ठ बहुपाद, और इन सब जीवों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं जिनके बहुत पैर हैं, जैसे गुंजर इत्यादि, जिनके बहुत पैर हैं। और उनसे भी श्रेष्ठ हैं जिनके चतुष्पाद, जिनके चार पैर हैं, और चार पैर वालों से भी श्रेष्ठ हैं दो पैर वाले, ततो द्विपाद, दो पैर वाले अर्थात तो मनुष्य श्रेष्ठ है। भगवान यहां तक ग्रेड करते हुए आए, मनुष्य का सम्मान करना चाहिए। मनुष्य भी तो बहुत हैं, तो भगवान कह रहे हैं तेषां वर्णाश्चत्वार, और मनुष्यों में गुण और कर्म के अनुसार जो ब्राह्मण समाज है सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था जहाँ है मनुष्य में वो श्रेष्ठ है, जहाँ वर्ण नाम की कोई चीज नहीं है वो बेकार है। वर्ण होना चाहिए, गुण और कर्म के अनुसार ये डिवीजन जरूर होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इंटेलिजेंट क्लास और शासक क्लास और व्यापारी वर्ग तथा श्रमजीवी, एक क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो भगवान कह रहे हैं जहां पर मनुष्य में जहां वर्ण व्यवस्था है वे मनुष्य श्रेष्ठ हैं, और वर्णों में भी चार वर्णों में ब्राह्मण से उत्तम है। ब्राह्मण में भी जो वेदज्ञ है, ब्राह्मणों में भी वह ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो वेद जानता है, उसका अध्ययन किया है, और वेद जानने वाले ब्राह्मणों से भी बढ़ करके वह है जो वेद का सही सही अर्थ जानता है, उसका पर्पस जानता है, पर्पट जानता है। और उससे भी श्रेष्ठ है जो अर्थ के साथ ही दूसरे के संशय का छेदन करने में समर्थ है, जो प्रचार करता है दूसरे के संशय को, डाउट को नष्ट कर देता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति इस डाउट में पड़ा हुआ है कि भगवान है कि नहीं, या भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इन सभी विषयों में संदेह है। तो ब्राह्मण वह सबसे श्रेष्ठ है जो संशय का छेदन करता है, प्रचार द्वारा जो जनता से संशय निकाल दे, उनका डाउट नष्ट कर दे। और ऐसे प्रचारक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वह है जो अपना स्वकर्म के श्रेयान स्वकर्म के अपने कर्म को दृढ़ता से करता है। जो ब्राह्मण का नियम है, धर्म है, उसको खूब डट करके करता है। और उससे भी श्रेष्ठ कौन है भगवान बता रहे हैं। विमुक्त संग, मुक्त संग, जो सब प्रकार के मैटेरियल कंटेमिनेशन से मुक्त है, प्रकृति के गुणों में फंसा नहीं है, वो श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ है गरीयान भूयान अदुग्धा धर्म आत्मना, जो आत्म धर्म का दृढ़ता से पालन करता है। आत्मधर्म मतलब आत्मा का धर्म, आत्मा का जो कार्य है वह करता है, लेकिन उस कार्य का दोहन नहीं करता। दोहन का अर्थ होता है कि हम कोई कार्य करके उस बाद में रिवार्ड चाहते हैं, तो उसको दोहन कहते हैं। तो ये भक्त है, सबसे ऊंचा है भक्त, जो आत्मा के धर्म का पालन करता है, लेकिन पालन करके उसके बदले में रिवार्ड नहीं चाहता। जैसे भगवान की कथा कह करके वो कुछ भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करता कि हमको कुछ पैसा मिले, सम्मान मिले, इसकी इच्छा नहीं करता, वो श्रेष्ठ है। या कहीं कीर्तन किया तो कीर्तन के बाद अब झोली फैला करके मांगना चालू करे तो ये दोहन हुआ। अपना कर्म करे, धर्म करे, लेकिन उसका दोहन न करे कि इतना किया हूं अब मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, मेरा भक्त जो मुझे अपना कर्म अर्पित कर दिया है और कर्म का फल तस्मात् मयि अर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरंतरा। सबसे श्रेष्ठ है वह व्यक्ति जो अपने कर्म को, कर्म फल को और देह को मेरी सेवा में अर्पित कर दिया है और निरंतर हमेशा देह और कर्म के अर्थ को जो मुझे सौंप दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है। मयर पितात्मना पुंस, मैं संन्यस्त कर्मणा, जो मुझमें अपना मन पूरा पूरा समर्पित कर चुका है और मेरे लिए ही कर्म करता है, अपने लिए नहीं करता, उस जीव से, उस भक्त से बड़ा मैं और कुछ देख नहीं रहा हूं। न पश्यामि परम भूतम अकर्तु समदर्शनात्, वह मेरा भक्त सर्वत्र मेरा पर्पस देखता है, अपना उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मेरी इच्छा को पूरा करना चाहता है। ऐसे भक्त से बढ़ करके मैं और किसी को नहीं देखता, न पश्यामि। इस तरह भगवान ग्रेड बनाए। और ध्यान रखना चाहिए कि सब में भगवान सम्मान और दान की बात कर रहे हैं, किसी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक सम्मान देना चाहिए, मान और दान होना चाहिए, प्रसाद देना, प्रसाद देना, वस्त्र देना, जहां जैसी आवश्यकता देखे ईश्वर को देख करके दान करना चाहिए, मान करना चाहिए। भगवान यहां है इस जीव में, भगवान सबके हृदय में है तो सम्मान करना चाहिए। ये प्रश्न होता है कि जीव तो बहुत हैं और कहां कहां हम सम्मान कर सकते हैं, तो भगवान ने अंत में ये कह दिया, मनसैताने भूताने प्रणमेद बहुमानयन। मनसा, मन द्वारा, एतानी भूतानी, इन सभी जीवों को जो दिखाई पड़े या जो सुनाई पड़े इनको मन से आदर करे, मन से प्रणाम करे, बहुमानयन, बहुत आदर पूर्वक श्रेष्ठ मान करके भगवान है, इस दृष्टि से सबको प्रणाम करना चाहिए। मनसा, मन से प्रणाम करना चाहिए और मन से आदर करना चाहिए। हम लोग भक्ति के पथ पर चले हैं तो हम लोगों के सबसे बड़े सहायक भगवान हैं। वही अवतार लेकर के भक्ति सिखा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। तो भगवान की एक एक बात पर ध्यान देना चाहिए। भगवान ने इस प्रसंग में अपने श्रीमुख से अर्चा विग्रह में ही केवल रत रहने वाले भक्तों की निंदा किए हैं। आप लोगों ने सुना होगा पिछले कई श्लोकों में कि भगवान अर्चा विग्रह की पूजा में रत रहने वाले और दूसरे जीवों का तिरस्कार करने वाले भक्तों के प्रति रंज हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। साफ कहते हैं कि हमको ये तृप्त नहीं करते हैं, हमको संतुष्ट नहीं करते हैं। अर्चा विग्रह की पूजा करें, भगवान वहां हैं, लेकिन अन्य जीवों का भी सम्मान सम्मान करें, क्योंकि वहां भी ईश्वर हैं। तो मधुर वचन द्वारा, प्रसाद द्वारा सम्मान करना चाहिए। हमारी भक्ति में यह बहुत सहायक अंग है। यदि हम सबको मन से प्रणाम करें और सबका सम्मान करें तो हमारी भक्ति सुरक्षित रहेगी, हम बढ़ेंगे। अन्यथा जीवों के अपराध से हमारी भक्ति क्षीण होती रहती है। एक बार की ऐसी घटना है, एक बार रूप गोस्वामी पाद जी इसी वृंदावन में ध्यान कर रहे थे। जमुना जी के तट पर ध्यान कर रहे थे और ध्यान का विषय था कि श्री राधा रानी एक वृक्ष से कुछ पुष्प चयन कर रही हैं, फूल चुन रही हैं। तो डाली को लटकाया लेकिन फूल ऊंचा था, इसलिए वो फूल पकड़ नहीं रही थी। तो भगवान कृष्ण देख लिए और वे वृक्ष पर चढ़ करके उस शाखा को झुका दिए अपने पैर से। तो राधा रानी उसको पकड़ करके फूल तोड़ने लगी, लेकिन कुछ देर के बाद भगवान ने उस शाखा को छोड़ दिया तो ऊपर हो गया। तो राधा रानी उस पर टंग गई, हाय हाय करने लगी। वो टंग गई तो इस पर रूप गोस्वामी को हंसी आ गई, और उसी समय एक ब्राह्मण स्नान करने के लिए आए थे जमुना जी में। तो वो सोचे कि हमको देख करके साधु हंस रहा है, तो उनके हंसने से वो बेचारा अपना अपमान समझा। इसी थोड़े से अपमान के कारण, अपमान वास्तव में किए नहीं थे, लेकिन वो साधु का हृदय दुखी हो गया, वो ब्राह्मण का हृदय दुखी हो गया। उसने सोचा कि हमारी हंसी उड़ा रहा है, हमको मूर्ख समझ करके। तो रूप गोस्वामी का ध्यान बंद हो गया, अब वो ध्यान में नहीं आ रहा था दृश्य। कृष्ण और राधा रानी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो बहुत फेर में पड़े, ये क्या बात है, हमारा ध्यान क्यों रुक गया। तो वे श्री सनातन गोस्वामी के पास पूछे कि क्या बात है, मेरे मन में भगवान की लीला आ नहीं रही है। तो उन्होंने साफ कह दिया, किसी का अपराध किया होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी का नहीं किया है। तो कोई आया था उस समय, तब रूप गोस्वामी ने बताया कि एक ब्राह्मण आए थे, वो जमुना जी स्नान करने जा रहे थे और मैं लीला का ध्यान कर रहा था, राधा रानी के द्वारा पुष्प चयन और कृष्ण के द्वारा शाखा को झुकाने की लीला देख रहा था, मुझे हंसी आई। तब श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने बताया कि तुम्हारी हंसी से वो ब्राह्मण दुखी हुआ होगा, तो उससे जाकर के क्षमा मांग लो, तब ठीक हो जाएगा। तब रूप गोस्वामी पाद जी आए फिर और उस ब्राह्मण से जो रास्ते में था फिर भेंट किए और चरण पर गिर करके क्षमा मांगे, तो ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, तो भगवान की लीला का तार चलने लगा। थोड़ा सा तिरस्कार हो गया अनजान में, और वो भी क्या, भगवान की लीला में ध्यान कर रहे थे, उसका स्मरण करके हंसी आ गई। इससे ब्राह्मण अपमान बोध किया, उसका प्रभाव हुआ कि रूप गोस्वामी प्रभुपाद के मन में कृष्ण लीला का आना बंद हो गया। तो इससे शिक्षा मिलती है कि हमें अपने व्यवहार में किसी का तिरस्कार नहीं करना है, वचन द्वारा यहां तक मन द्वारा भी हमेशा सत्कार करना है, आदर करना है। हरे कृष्णा।